Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Ishavasya Upanishad, presented by Swami Sri Chidambaranandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
फिर एक बात मेरे मन में आई. मैंने कहा कि अगर कोई सामने वाला पूछता है कि पूजा करते हो कि नहीं और मैं नहीं करता हूं और कहूं कि मैं करता हूं तो सामने वाला तो करना शुरू ही कर देगा, लेकिन बार बार अगर लोग हमसे पूछे कि पूजा करते हो और मैं बार बार झूठ बोलूं कि हां करता हूं तो एक दिन मेरे मन में भी आएगा कि रोज रोज बोलता ही हूं झूठ तो चलो शुरू ही कर देता हूं. समझ में जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझे आप कि जो बात आप नहीं कर रहे थे वो भी अगर बार बार कहना शुरू कर दिया तो एक दिन आपके मन में भी आएगा कि जब रोज कहते हैं तो चलो अभी इसको कर भी लेते हैं. इसलिए जो कहो जो सुनो जो बोलो है ना उसको जियो भी, और जियोगे जियोगे. अभी नहीं जी पा रहे हो क्योंकि सुनना तो शुरू कर दिया, अभी बोलना नहीं हो पा रहा. और बोलते हो कब बोलते हो कि जब दूसरों को जरूरत होती है, लेकिन बोलना तब शुरू करना चाहिए जब खुद की जरूरत हो. यह भेद नहीं समझ में आया कि आप प्रवचन सुना हुआ प्रवचन दूसरों को कहते हो लेकिन कब, जब लगता है कि दूसरे को जरूरत है तब आपको ज्ञान अपना याद आता है, लेकिन नहीं नहीं जब आपको जरूरत हो तब आप उसे कहिए. कि क्रोध हो आपको कि गुस्सा हो आपको तो उस क्रोध के समय पर यह प्रवचन अपने मन को उपदेश दीजिए, बोलिए कि नहीं नहीं थोड़ा रुको ठहरो बाद में क्रोध करता है, जीना शुरू हो जाएगा. मूलंतरो केवलम आश्रयंतः, कहने का एक ही तात्पर्य है कि घर को वृक्ष बनाइए, जहां रहते हो उसको पेड़ बनाइए, चिपकिए मत, आसक्त मत होइए. और मेरा निवेदन है, बहुत अच्छा निवेदन है, कि छूटने ही वाला है. आप कितना भी पकड़ के रखो, कितना भी आप दावे करो, कितने भी मुकदमे लड़ो, है ना, मैं बताऊं आपको अपनी पीड़ा, बताऊं अपना कष्ट, कहूं कि जब कोई महात्मा और मुकदमा लड़ने के लिए जाता है कि यह जमीन मेरी है कि आश्रम मेरा है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य इस देश का और धर्म का कोई नहीं हो सकता. ये कपड़े पहन करके और हम लड़ने के लिए जाएं, कोर्ट में जाएं कि यह जमीन मेरी है, और जरा आप क्या है आरआईटी है आरटीआई क्या है उसे पता लगा ना आप कि कोर्ट में कितने केसेस ऐसे हैं जिसमें आश्रमों के केस चल रहे हैं, आप पता लगाइए. और आप जान करके चकित रह जाएंगे कि अगर 1,00,000 आश्रम है तो मुझे पूरा विश्वास है कि 90,000 आश्रमों के केस पेंडिंग में होंगे. ये दुर्दशा है. अब बताइए आपका घर ठीक है कि आश्रम ठीक है. कभी कभी मुझे लगता है महात्माओं को प्रवचन सुनाने की जरूरत है. हम भी उसमें शामिल हो सकते हैं. ये शंकराचार्य को सुनाने की जरूरत है. ये थे पंचकम, हम लोगों को सुनने की जरूरत है. मूलम तरो केवल माशद, अब जाने दो उनसे क्या लेना देना, हमें तो हमसे मतलब है, हम लोगों से मतलब, आप सुनते हो इसलिए मतलब. मूलम तरो केवलम आश्रयंता, कि वृक्ष की जड़ के आशय को लेकर जीवन यापन करने वाले, अर्थात सिर्फ सोने के लिए सुरक्षित जगह मिल जाए बस, कोई आ सकती नहीं. पाणिद्वये भोक्तुम, बहुत बढ़िया है. देखो सारी बात तो जो कहनी थी वो पहले श्लोक में मैंने कह दी, आचार्य ने भी कह दिया, 15-20 दिन से वही चला रहे थे, इसको पूरा करना ही है. पूरा हो जाए वही अच्छा है. अब सिर्फ विस्तार है उन्हीं भावों का, लेकिन प्यारी बात कही। पाणिद्वये भोक्तुम मत, भोक्तुम पत्न क्या है, भोक्तुम मत्र यंतः। ये जो हाथ है ना, हाथ को ही जिसने पात्र बना लिया, बड़ी बढ़िया बात है। हाथ को ही जिसने पात्र बना लिया, यानी आसक्ति के नाम पर उसको पात्र में भी आसक्ति नहीं है। कि पहले लोग, महात्मा लोग घर छोड़ करके चलते तो भी कमंडलू हाथ में रखते, एक जगह तो हो हमारे ऊपर महात्मा ही बिगड़ गए। मैं जब यात्रा में था, भ्रमण में था, भारत भ्रमण में था कहना चाहिए, काय का भारत भ्रमण, ऐसी भटक रहे थे। तो सही बात यह है कि मैंने अपने साथ में कोई पात्र कभी नहीं रखा। अच्छा, महात्माओं में नियम है, विशेष करके वैष्णवों में, ये जो रामानंदी वैष्णव होते हैं ना, बड़े नियम है। तो उनका जल पात्र उनका खुद का रहता है। उनके यहां आश्रमों में जाओ आप, भोजन करने के लिए बैठो तो भोजन करने के लिए सब अपने अपने पात्र लेके आएंगे, अपने अपने कमंडलू, अपने अपने गिलास, जो भी है उनके खुद के पात्र। आश्चर्य की बात यह है उनके आश्रमों में वो पानी पीने के लिए कोई पात्र आपको देंगे ही नहीं, भोजन के लिए पत्तल बिछाएंगे, थाली देंगे, लेकिन पानी पीने के लिए कोई पात्र नहीं देंगे। अब मैं गया तो सब अपने अपने पात्र ने, मेरे पास कुछ था ही नहीं, मैं ऐसे ही पहुंच गया। तो कहते आपका जल पात्र, हमने कहा नहीं है। बोले कैसे महात्मा हो, लो महात्मा की पहचान है कि आपका पात्र होना चाहिए। आचार्य कह रहे हैं कि महात्मा ऐसा होना चाहिए कि पात्र है ही नहीं, हाथ ही सब कुछ है। यह हाथ ही सब कुछ है कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि आप पात्र मत रखो, कहने का तात्पर्य यह है कि चिपकने के नाम पर आप कमंडलू से भी मत चिपको। कमंडल जानते हैं आप क्या बोलते, समझ गए? पूछता इसलिए हूं कि गुजराती पता नहीं क्या बोलते हो। हाँ ठीक, हाँ कोई भी हो, दूधी का भी बनाते थे महात्मा, पुराने महात्मा लोग दूधी का भी बनाते, नारियल का भी, बड़े नाटक के साथ कई महात्मा नारियल का पात्र ही प्रयोग करते। वो नारियल होता है ना अपना जो खाते, उसका ऊपर का निकाल के और उसी को कटोरी बना ले, कुछ भी बनाओ, लेकिन अगर उसमें भी चिपक गए वो हानिकारक है। कि आप नारियल के पात्र में खाते हो, कि आप दूधी के पात्र में खाते हो, कि जल पीते हो, कि धातु के पात्र में, कि स्टील की, चांदी की, सोना, कोई भी हो, मायने धातु का नहीं है, महत्व धातु का नहीं है, महत्व वृक्ष का नहीं है, महत्व नारियल का नहीं है, महत्व विचार का है, चिंतन का है, महत्व सोच का है। आप चांदी के बर्तन में भोजन करते हो लेकिन चांदी के पात्र, सोने के पात्र भोजन करते हो लेकिन सोने के पात्र में आसक्ति नहीं है कि चला गया कोई बात नहीं, लेकिन आप नारियल के पात्र में भोजन करते हो और वो चोरी हो जाए आप रोने बैठ जाओ, और रोते हैं, मैंने देखा है कि नारियल का पात्र चोरी होने पर भी रोते हैं, उस पर भी विवाद होता है, उस पर भी झगड़े होते हैं। आचार्य का तात्पर्य यह नहीं है कि आप नारियल का पात्र रखो, आचार्य का तात्पर्य तो यह है पाणिद्वये भुक्त, पात्र तो आपका हाथ है, आप इसी में पाइए। करपात्री बोलते ना, करपात्री, कर माने हाथ, पात्री यानी पात्र बना करके खाने वाला, हाथ को पात्र बना करके फिर खाने वाला। भगवान को देखा है नहीं, तो भागवत में वर्णन आता है और बड़ा प्यारा वर्णन है। छोटे से प्यारे से भगवान ग्वाल वालों को लेकर के यमुना के पुलिन पर जाते हैं, सभी बैठ जाते हैं, बीच में भगवान बैठते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं भगवान, वन भोज है ना। कैसे भोजन कर रहे हैं, वाह बहुत बढ़िया, तो क्या है, जठर पटयो, जो वेणु बांसुरी बजाते हैं वो बांसुरी को यहां पर ऐसे लगा लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये छवि इतनी प्यारी लगती है मुझे, कभी ध्यान करना हो इस छवि का जरूर करना, बढ़िया लगता है। एक कमर में पीताम्बर तो बांधी, अब बांसुरी मुंह से बजाने की चीज है तो उसको जमीन पर रख नहीं सकते, तो ऐसे कमर जठर पटयो श्रृंगवेत्र चकुक्षे, सींग भी बजाते थे तो वो भी बजाने की, मुंह से बजाने की चीज है, जमीन पे नहीं रख सकते तो यहां बगल में दबा लिया। वामे पाणव मसृण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु, वाह, भोजन करने की बारी आई तो कैसे भोजन कर रहे हैं भगवान जिनकी पूजा करते हो, यह है पाणिद्वये भोक्तुम, भगवान कर रहे हैं वो चीज, जी रहे हैं, देखिए क्या बात है। वामे पाणु मसृण कवलम, जो खाना है उसको बाएं हाथ में रखा, ऐसे बोले क्या खा रहे हैं, बहुत बढ़िया, तो कहते हैं दही भात खा रहे हैं, प्रिय है ना दही भात, तो दही भात हाथ में रख लिया, साथ साथ में तत् फलान्यंगुलीषु, तो अचार भी दिया था माताओं ने, कि नींबू भी दिया था, कि मिर्ची भी दिया था, तो उसको रखें कहां, यहां तो दही भात आ गया, कहां रखें, तो उंगलियों में फंसा लिया तद फलान्यंगुली, यहां अचार फंसा लिया, यहां नींबू फंसा लिया, यहां मिर्ची फंसा लिया, खाते हैं फिर थोड़ा अचार लेकर के उसको स्वाद लेते, अब बताइए जरा थाली की जरूरत है, और आप लोगों के यहां जितना भोजन नहीं होता उससे ज्यादा तो कटोरियां होती हैं मैं खंभात में था तो एक सज्जन बोले कि स्वामी जी खंभात की खाड़ी बड़ी प्रसिद्ध है, तो वहां एक मंदिर है जो कि नाविकों ने बनवाया था, मछुआरे मछली पकड़ने वाले लोग जब समुद्र में जाएं तो पूजा वूजा करके जाते हैं, तो माताजी का मंदिर बनाया बड़ा बढ़िया विख्यात है, तो कहने लगे स्वामी जी वहां जाएंगे दर्शन करेंगे, खंभात से थोड़ा दूर है, मैंने कहा, फिर एक सज्जन आए कहने लगे स्वामी जी भोजन भी वहीं करेंगे, यहां से लेके चलते हैं वहीं पाएंगे, मैंने कहा क्या बात, वनभोज करेंगे, बहुत बढ़िया, मैंने कहा ज्यादा झंझट नहीं करना, सिंपल बनाएंगे वहीं खाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है गए हम, हे भगवान मैं सोच रहा था वनभोज करेंगे लेकिन वो तो घर भोज हो गया, भोजन भी इतना सारा लेके गए, दुनिया भर का आइटम, कहूंगा तो फिर आपको बुरा लगेगा गुजराती लोग ये बोलते हैं भाव के भूखे होते हैं और भोजन तो जितना था थाई, कटोरियां गिलास थालियां प्लेट चम्मचे हद हो गई, मैंने कहा इससे तो अच्छा घर में ही खा लेते, सारी चीजें, वो चाकू भी, अच्छा गुजराती भूलते कुछ नहीं, मैंने एक गुजराती से पूछा, उनका आप लोग एक बात बताइए इतना याद कैसे रख लेते हो, कहते महाराज हम 15 दिन पहले से तैयारी करते कहीं जाना हो तो सारी चीजें साफ व्यवस्थित हो जाए, हाँ व्यवस्था की दृष्टि से आप लोगों का जवाब नहीं, बहुत बढ़िया, हर तरीके से व्यवस्थित होते हैं सारी चीजें, लेकिन भगवान को देखिए, वामे पाणव मसृण, कभी खा के देखना बड़ा अच्छा लगेगा, यहां फंसाइए कई बार मैं सोचता हूं कि कहीं ऐसी शिविर की जाए और जहां ऐसी भोजन हो अब की बार तीर्थ में कहीं करेंगे तो ऐसी करेंगे, तद फलान्यंगुलीषु पाणिद्वय भोग, ये बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, गांव में देखो छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही खाते हैं, हाथ में लिया और खा रहे हैं बड़े प्यार से मस्ती, कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप किसी पर आश्रित मत होइए, ध्यान रखना अगर आप पात्र में भी आश्रित हो गए तो दुखी होना पड़ेगा, मैं एक वाक्य बोला करता हूं, हमेशा बोला करता हूं कि किसी भी चीज पर आश्रित हो गए अगर आप, तो उस चीज के कारण आपको दुखी होना ही पड़ेगा, कि चम्मच उस पर अगर आप आश्रित हो गए तो उसके कारण भी आपको दुखी होना पड़ेगा, इसलिए गुजरातियों की एक और आदत हमको पसंद है, वो चावल हाथ से खाते हैं, मुझे बढ़िया लगता है, किसी चीज पर आश्रित मत होइए, मिले तो ठीक नहीं मिले तो ठीक, पात्र है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, कटोरियां हैं तो ठीक, नहीं है तो ठीक। हमारे महात्माओं को देखना कभी खाते हुए, विशेष करके वैष्णव, वो कटोरियां रखते ही नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे, वो एक कटोरी नहीं रखते, वाट की कटोरी एक भी नहीं, एक भी नहीं, सिर्फ थाली दे देंगे बस। अब आप सोचो दाल कहां रखें, तो चावल रखते हैं, चावल में बीच में जगह बनाते हैं और उसमें वो दाल डालते हैं, सब्जी रखते हैं, फिर रोटियां रखते हैं, कमाल है। अब ऐसा वो क्यों करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यह समझ में आता है कि अगर ऐसा भी हो तो भी ठीक है, जैसा हो, और कुछ नहीं हो तो भी ठीक है। कि हमने ऐसे खाती हुई भी देखा कि हाथ में ही, और हमने खुद खाया है, खाती हुई देखा क्या है कि हाथ में ही और रोटी ले लिया कि परौठा ले लिया, उसी पर सब्जी रख लिया और फिर आराम से बैठ के खा रहे हैं। हम लोग कई बार ट्रेन में सफर करते हैं तो जैसे हम हैं ऐसे हमारे साथ में रहने वाले सब हैं, पकड़े ही हैं, याद किसी को नहीं रहता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बर्तन रखना ही भूल जाते हैं, और मैं सही कह रहा हूं है? कई बार ऐसा होता है, मस्त तो है ये सब, तो फिर कैसे खाया जाए, क्या क्या फर्क पड़ता है, आओ जी हाथ में लो, अभी भी हाँ अभी भी आराम से खाते हैं, प्यार से खाते हैं, क्या फर्क पड़ता है। पाणि द्वये भोक्तुम मत्रयन्त, और मैं आपसे एक साधना की दृष्टि से कहता हूं कि इसका प्रयोग अपने जीवन में हमेशा करना चाहिए। न लोगों के सामने आप ऐसा करो, न दूसरों के सामने करो, लेकिन घर में आप कभी हैं, भोजन करने की बारी आई तो हाथ में लेकर के कभी खा लीजिए। हिम्मत नहीं पड़ेगी लेकिन कोशिश करना, इसके लिए भी जवाब जा रहा। सोचिए आप कि जब आपको अपने ही घर में खाने के लिए, हाथ में खाने के लिए तैयार करना पड़ेगा खुद को, अगर समाज में खाना पड़े तो क्या हालत होगी, सोचो। लेकिन मैं कहता हूं साधना की दृष्टि से कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि जीवन में उनका प्रयोग होते रहना चाहिए, और अगर आपने साधनाओं का प्रयोग घर में करना शुरू कर दिया तो जब वही कंडीशन कभी बाहर आपके जीवन में आएगी आपको कभी दुख नहीं होगा। मेरी बात समझे, कि जैसे घर में आपने सोच लिया कि हम रोज बिस्तर पर सोते हैं लेकिन कभी कभी जमीन पर भी सोना चाहिए, ऐसा सोच करके अगर आप जमीन पर भी सो गए और बाहर कभी जमीन पर सोना पड़ा तो आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। समझ रहे हैं मेरी बात, कि अगर आपको बिना तकिया के घर में सोने की आदत आपने लगा ली कि कभी कभी बिना तकिया के सोएंगे, और बाहर कभी अगर आपको तकिया नहीं मिला तो आपको तकलीफ नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा। इसलिए इन सुनी हुई बातों को, इन उपदेशों को, इन साधनों को सिर्फ सुनने तक मत रखना, घर में भी उनका प्रयोग अकेले ही करो, किसी को पता ना चले, बताने के लिए ही नहीं करना है लेकिन जीवन में अभ्यास। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, बहुत प्यारी बात कहते हैं, कि साधक को या व्यक्ति को, मनुष्य मात्र को या जीव मात्र को प्रकृति से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। कि पशु प्रकृति से जुड़े हुए हैं इसलिए कम बीमार पड़ते हैं, और हमने अपने आप को प्रकृति से तोड़ दिया तो हम ज्यादा रोज बीमार पड़ते हैं, ज्यादा बीमार पड़ते हैं। प्रकृति से जुड़ने का अर्थ है परिस्थिति के अनुसार अपने आप को तैयार रखना, सदैव तैयार रखना। ऐसा नहीं कि जब परिस्थिति आएगी तब देखेंगे, नहीं जी, हमेशा तैयार है कभी भी। कि जैसे लाइट चली जाए तो आप तैयार रहते हैं कि विकल्प, तो इमरजेंसी लाइट आप हमेशा तैयार रखते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइट चली जाएगी तब देखेंगे इमरजेंसी लाइट, फिर इमरजेंसी का मतलब ही क्या हुआ। परिस्थिति के अनुसार अपने आप को तैयार कर लेंगे, नहीं, तैयार हमेशा रहिए कैसी भी परिस्थिति हो। हमारे लोग गए थे नैमिषारण्य में, सबको जमीन पे सुलाया, सबको, अब वहां पलंग थे ही नहीं लेकिन बड़ा आनंद आया, पता नहीं आनंद आया कि नहीं आया वो तो मुझे नहीं मालूम। पाणि द्वये भोक्तुम मत्रयन्त, जमीन में सुला लिया, अब की बार हाथ पे खिलाने वाला हूं और बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात कही। कंथाम अपि स्त्रीमिव कुत्सयन्त, बड़ी प्यारी बात है, बहुत सुंदर बात कही। कंथाम अपि स्त्रीमिव कुत्सयन्त, कुदड़ी जानते हैं, गुदड़ी रजाई जैसा, रजाई नहीं कहना चाहिए, गुदड़ी। अगर मैं सही समझता हूं तो गुदड़ी का अर्थ है कि फटे पुराने कपड़ों को जोड़ करके बनाया गया ओढ़ने वाला कपड़ा, बिछाने ओढ़ने। वो गुदड़ी एक ऐसी चीज है जिससे आप सब कुछ कर सकते हैं, ओढ़ भी सकते हैं, बिछा भी सकते हैं, तकिया भी बना सकते हैं, लपेट भी सकते हैं, ऑल पर्पज यूज कर सकते हैं, ऐसा है, सब कुछ कर सकते हैं गुदड़ी। आचार्य क्या कह रहे हैं? आचार्य कह रहे हैं कंथाम अपी गुदड़ी, कंथाम अपी गुदड़ी भी कोत्सयंता स्त्रीमिव। तो कहा गुदड़ी में भी जैसे स्त्री के प्रति भावना वैराग्य विरक्त व्यक्ति की होती है, त्याज्य भावना होती है, नफरत वाली भावना होती है, क्या कहना चाहिए, तुच्छ बुद्धि यानी महत्वहीन बुद्धि। इसका अर्थ क्या है वो समझो आप, कि जैसे साधक पुरुष स्त्री को महत्व नहीं देता, जैसे स्त्री पुरुष को महत्व नहीं देती, ऐसे ही व्यक्ति ये सन्यासी महात्मा गुदड़ी में भी महत्व बुद्धि न रखे। समझ में नहीं आया अभी? देखो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो आप समझो, शास्त्रों में ज्यादातर बातें स्त्री निंदा के रूप में या पुरुष निंदा के रूप में, यानी अपोजिट सेक्स जो है उसकी निंदा के रूप में बहुत सारी बातें कही गई हैं शास्त्रों में। वो निंदित है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, दूर रहो, बचाओ, भागो, और बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, काम के विपरीत बातें, बहुत ज्यादा निंदित बातें कही गई है ना, सिर्फ स्त्री को टारगेट करके, कि सिर्फ पुरुष को टारगेट करके। लेकिन मैं बहुत बढ़िया इस बात को मानता हूं और आचार्य इस बात का समर्थन करते हैं कि बात सिर्फ स्त्री की नहीं है, कि बात सिर्फ पुरुष की नहीं है। सिर्फ स्त्री का त्याग करने से कोई व्यक्ति सिद्ध हो सकता है? बिल्कुल नहीं। कि पुरुष का त्याग करके कोई स्त्री सिद्ध हो सकती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बात है कि किसी से भी चिपक गए आप, किसी से भी चिपक गए और वहीं खत्म हो गए। स्त्री से चिपके तो भी खत्म। देखो पांच विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और आप क्या ऐसा सोचते हैं कि इन पांचों में से कोई एक बेहतर होगा, कि कोई एक बुरा होगा? सब बराबर है। फिर ये क्यों ऐसा कहना चाह रहे हैं हम कल चर्चा करेंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय।